ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर रंजीत मेहता, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य अंतरिक्ष उद्योग में नवाचार और विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही लगभग 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की 2 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं प्रमुख क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने, नई रेल लाइनों और मल्टी ट्रैकिंग के जरिए माल और यात्रियों की बेहतर आवाजाही को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखती हैं। डॉक्टर मेहता, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या जो आज फैसले लिए गए हैं, कितने अहम फैसले हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप थोड़ी जानकारी दें।
पहला फैसला अगर आप देखें तो स्पेस में जो ये सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सारी गतिविधियों के लिए जो 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड गवर्नमेंट ने दिया है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि बहुत समय से जिस हिसाब से हमारे देश में सैटेलाइट डेवलपमेंट में स्पेस में काम हो रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किस तरीके से जो है अपने स्टार्टअप्स को और इस दिशा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए फंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज अगर आप देखें तो भारत जो है दुनिया का 3रा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। जब 2016 में स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था तो हमारे पास सिर्फ 400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, लेकिन आज 2024 में 1.5 लाख से ज्यादा जो है हमारे देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, और हमारे देश में 115 से अधिक यूनिकॉर्न हैं, और कोविड के टाइम में हमारे देश में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न बने थे। इसका मतलब ये हुआ हमारा देश आज अगर आप देखें डेमोग्राफिक डिविडेंड के स्तर पे देखें 65% जो युवा हैं करीब 35 वर्ष से कम उम्र के हमारे देश में लोग हैं, तो इंडिया एक यंग कंट्री है, तो एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि इससे जो है इस सेक्टर में जिन युवाओं को इंटरेस्ट है और जो प्राइवेट सेक्टर जो है स्पेस सेक्टर में व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि कैसे लो कॉस्ट जो है सैटेलाइट सॉल्यूशन जो है इंडिया इसरो के साथ मिलके और जो इसमें कैसे एक माइक्रो एंड नैनो सैटेलाइट है उनको कैसे जो है बढ़ावा दिया जाए। इसमें कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे जिसमें डिमांड बहुत बढ़ रही है ये सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में, तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, और जो प्राइवेट सेक्टर है सारे जो है सैटेलाइट डेवलपमेंट के क्षेत्र में और जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, रिमोट सेंसिंग है, नेविगेशन सर्विसेज हैं, उसमें जो है कई इस दिशा में कई पार्टनरशिप्स हम बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें करने का इसमें अवसर मिलेगा। इवन कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है तो काफी बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है कि कैसे जो है कॉम्पोनेंट वगैरह को इस दिशा में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये सारी चीजों से सबको इसमें फायदा होगा। और जो 3रा बड़ा उद्देश्य है जैसे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, उसमें कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं इसरो के साथ, और उससे जो है स्पेस टूरिज्म की आज बात चल रही है, स्पेस हैबिटेशन की बात है, स्पेस में कैसे लोग आगे जा सकते हैं, रुक सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये सब चीजें जो हमें आज एक सपना लगता है ये सच्चाई होने वाली है, तो इसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज का इन्वॉल्वमेंट है। और ये जो एक महत्वपूर्ण फैसला आज कैबिनेट ने लिया है ये जो है हमारे देश के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण और देश में एक अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी सबके लिए क्रिएट करेगा।
जी, ये जो फंडिंग है, इस फंडिंग को लागू करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा क्या रहेगी और किस तरीके से इस फंड को उपयोग में लिया जाएगा?
देखिए, किस तरीके से इस फंड को उपयोग में लिया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया आज हमारा देश 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है दुनिया का।
जी,
तो इसमें कई हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी एक बहुत ही ट्रैक्शन इसमें मिल रहा है, बहुत सारी चीजें स्पेस के थ्रू आने वाले टाइम में कर सकते हैं, एक तो इसमें कई ऐसी सुविधाएं जो है, पहली बात तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को की ग्रोथ के लिए जो फंड है काम आएगा, जिसमें कि स्पेस टेक्नोलॉजी में जो स्टार्टअप्स जैसे स्काई रूट्स हैं, अग्निकुल, ये सब कई सारे ऐसे एरोस्पेस में सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें एक तो काफी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी, और जो दूसरा जो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विलेंस में बहुत ज्यादा इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है ये बहुत अभी जो है फोकस कर रहा है स्पेस सर्विलेंस पे, मेरे ख्याल से इस पे भी इसकी काफी भूमिका रहेगी,
जी
और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इससे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसरो के साथ कोलैबोरेट करके इस चीज को कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये स्पेस में एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, आने वाले टाइम में जो स्पेस का वेस्ट है उसके मैनेजमेंट की भी बात आएगी, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगी। जो अपना स्पेस में एक्टिविटीज हो रही हैं ये धीरे धीरे ग्रो करेंगी, तो ग्रो करेंगी तो उसमें जो है एक स्पेस डेब्रिस की प्रॉब्लम धीरे धीरे आएगी।
जी
तो अभी से जब ये इस दिशा में ये फंड जो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड जो है सरकार ने ये 1 करोड़ का इसमें दिया है, तो अभी से अगर इस दिशा में लोगों को प्रोत्साहित किया जाए तो इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जैसे एजुकेशन में है, स्किल डेवलपमेंट है, इसमें डिमांड बढ़ेगी कई ऐसे प्रोफेशनल्स की जो कि स्पेस टेक्नोलॉजीज में, स्पेस सैटेलाइट इंजीनियरिंग में काम करना चाहते हैं। इससे जो है ओवरऑल जो है ना, इससे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जॉब क्रिएशन होगी, क्यों ये नया सेक्टर एक खुल रहा है। और जो वेंचर कैपिटल फंड जो क्रिएट किया है गवर्नमेंट ने, इसको मंजूरी दी है, इससे कई जो है फॉरेन कंपनीज भी जो कि कोलैबोरेशन के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज, ये भी इस दिशा में जरूर आएंगी। ओवरऑल जो है एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पूरे देश में होगा। ओवरऑल जो है जो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो ग्रो होगा, और स्टार्टअप्स को जो यंग युवा शक्ति है उनको एक ऐसा नया क्षेत्र मिलेगा जिसमें वो अपना नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं।
अभी आपने कई संभावनाएं बताई कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए जाएंगे इस क्षेत्र में, और हम जब देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब आकाशवाणी द्वारा देश को संबोधित करते हैं मन की बात में, तब भी वो स्पेस सेक्टर से जुड़ी बात उन्होंने रखी, और ये सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये फंड जो है सरकार के, ये स्पेस सुधारों को कैसे बढ़ावा देगा, और साथ ही में आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करने में किस तरह सहयोग करता है।
अभी जितना समझ पाए हैं इसमें जो फंड का जो डिप्लॉयमेंट होगा फंड का, उसमें एस्टिमेटेड अगर आप 2025-26 में करीब 150 करोड़ उसमें रिलीज किया जाएगा, देन 26-27 में करीब 250 करोड़ का होगा, 27-28 में फिर 250 करोड़ होगा, 28-29 में 250 करोड़ होगा, और 29 और 30 के बीच में करीब 100 करोड़ का मिला के टोटल जो है 1,000 करोड़ का ये पूरा फंड है लिया जाएगा। और इसमें फंड के आने से क्या है, एक जो कैपिटल इन्फ्यूजन होगा इकोनॉमी में वो एक बहुत फायदेमंद होगा, इसमें कंपनीज आएंगी और स्पेस इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, और जो स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होंगे इसमें जो है देश की कई ऐसी कंपनीज हैं जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो सकती हैं ये टेक्नोलॉजी डेवलप करके। और सबसे बड़ी बात है जो आत्मनिर्भर भारत जो बनने का सपना है, मैं समझता हूँ इस दिशा में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और जॉब क्रिएशन आज हमें देखिए, एट द सेम टाइम जब हम एक युवा देश हैं
जी
और लाखों करोड़ लोग हमारे वर्कफोर्स में हर साल आ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी है इस दिशा में काम करने की। और जिस तरीके से इंडिया ने जो है बाय 2070 2070 तक नेट जीरो होने का एक मिशन लिया है, और 2030 तक करीब 45% जो है एमिशन का रिडक्शन करेंगे इकोनॉमी में, तो उस दिशा में भी मेरे ख्याल से इससे काफी मदद मिलेगी ऐसी इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में। और जो इस तरीके का जो कैपिटल इन्फ्यूजन होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है पूरी इकोनॉमी में, क्योंकि ये तो एक सीड फंड है, इसके थ्रू एडिशनल फंडिंग की भी जो जरूरत है वो पूरी हो सकती है। कई ऐसे लोग होंगे जो कि लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट के लिए आएंगे, इससे जो है प्राइवेट सेक्टर को भी कॉन्फिडेंस आता है, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है इस स्पेस सेक्टर में वो अपना आएंगी। तो ये एक ओवरऑल जो है एक पूरे हमारे देश में इससे जो है स्पेस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1,000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
स्पेस जैसे सेक्टर में, जिस सेक्टर की बहुत जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक सेक्टर है और जिस सेक्टर में इनोवेशन बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है, उस सेक्टर को प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसले से 2020 में सभी इनोवेटर्स के लिए खोला था, स्टार्टअप्स के लिए खोला था। तो आज एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया जाएगा स्पेस सेक्टर के लिए।
डॉक्टर मेहता, आज आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भी 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत की दो रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इस पे थोड़ा हमारे श्रोताओं को आप जानकारी दें।
देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है तो उसका जो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग होगा तो उससे जो है कई सारी देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है और देश में एक नया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रहना है तो उस लिए हमें अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम करना है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए जब इसमें आप देखेंगे कई गांवों को इससे जोड़ा जा रहा है, आप आंध्र प्रदेश में, अमरावती, बिहार में ये जो प्रोजेक्ट है इससे मदद मिलेगी। जो रेलवे सेक्टर है, अगर हम यातायात में उसको स्ट्रांग करेंगे तो उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, स्टील है और आपका सीमेंट है, ये सब फर्टिलाइजर्स हैं जो मूवमेंट होती है, उस दिशा में काफी एक मदद मिलेगी। और जिससे एक तो लॉजिस्टिक कॉस्ट तो कम होगी, उससे जॉब क्रिएशन होगा। जब 6,700 करोड़ की जो परियोजना आज रेलवे सेक्टर में कैबिनेट ने क्लियर करी है, जिसका मेन इन्वेस्टमेंट रहेगा आपके अमरावती और बिहार, आंध्र प्रदेश और बिहार में रहेगा, और उससे जो है ओवरऑल एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री को फायदा होगा, एक इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी, और एक इंडस्ट्रियल हब्स को और रिमोट एरियाज के बीच में एक कनेक्शन बढ़ेगा, तो जिससे जो है ओवरऑल एक इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि मार्केट एक्सेस मिलेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्मॉलर टाउन है, छोटे टाउन है, तो उनको जो है काफी बूस्ट मिलेगा, लोकल इकोनॉमीज को इससे बूस्ट मिलेगा। तो इससे एक इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी होगी, क्योंकि आप वहां तक जा सकते हैं, मार्केट तक आसानी से ले जा सकते हैं, कई जगहों पे जो लॉजिस्टिक हब्स हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं। और जब भी जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, चाहे रेल हो, रोड हो, स्पेशली रेल ट्रांसपोर्ट जब होता है तो फ्यूल एफिशिएंट होता है। ओवरऑल जो हमारा सपना है मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का, इन कदमों की वजह से भारत जो है एक सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है उससे पूरे देश को फायदा होता है और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और लोगों के हाथ में पैसा आता है।
जी, आपने रोजगार सृजन की बात करी और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया इसमें। खास तौर पे अगर हम बात करें तो ये परियोजनाएं फ्रेट क्षमता के लिए कितनी उम्मीदें लेकर के आती हैं और किन प्रकार के उत्पादों को ये बेहतर परिवहन का लाभ मिल सकता है?
देखिए, जब भी रेल की परियोजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की परियोजना है, चाहे सड़क की योजना है, इन सबसे ओवरऑल जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है
जी।
और जॉब क्रिएशन होता है, और जो लोकल जो किसान हैं, दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, उससे जो है मार्केट और बिजनेस सेंटर को जोड़ता है। आपके जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है, आप कृषि क्षेत्र से जब आप मार्केट को जोड़ते हैं तो इसका फायदा किसको होता है? किसान को होता है
जी।
किसान को होता है तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो जब भी इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट का लॉन्च होता है, उसमें कंस्ट्रक्शन होता है, तो उससे सिर्फ उसी चीज को फायदा नहीं होता बल्कि उससे कई जो 300-400 और एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी फायदा होता है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज 6,798 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत की दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। हमारी संस्कृति की पहचान के कई बड़े सेंटर्स को ये प्रोजेक्ट जोड़ता है। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, 4,553 करोड़, 256 किलोमीटर, 87 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इसमें काम के दौरान।
तो श्रोताओं, वक्त है इस चर्चा को यहीं विराम देने का, और डॉक्टर मेहता, आप आकाशवाणी के साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।